मेरी भी आवाज सुनो कार्यक्रम के तहत आज हमारे साथ रूबरू होने जा रही छिंदवाड़ा जिले की पहली महिला अधिवक्ता सुश्री आराधना भार्गव जी। आप सुन रहे मोबाइल वाणी के लिए मैं दिनकर पापुकर। नमस्कार मैडम जी।
नमस्कार
मैडम जी, हम आपसे जानना चाहे कि महिलाओं के लिए संपत्ति और भूमि में उनका कितना हक होता है और इसके लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या प्रावधान किए गए।
पहले थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। 1956 के पूर्व महिलाओं का संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। जो संपत्ति जहां से होती थी उसका वो उपयोग कर सकती थी, पर उसको ट्रांसफर करने का हक उनको नहीं था, यानी संपत्ति पर उनका कोई अधिकार नहीं था। महिलाओं ने लगातार संघर्ष किया और कई कुर्बानी देने के बाद आज महिलाओं का संपत्ति पर बराबरी का अधिकार है। जिस तरीके से संपत्ति पर, पिता की संपत्ति पर बेटे को अधिकार है, उसी तरीके से बेटी को भी बराबरी का संपत्ति पर अधिकार का कानून बन गया। परंतु यह कानून बन जाने के पश्चात भी आज भी महिला को संपत्ति पर अधिकार देने के लिए परिवार के लोग तैयार नहीं है। महिलाओं को उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले गोवा हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया। उस महिला ने कहा कि जितना मेरे भाई को संपत्ति पर अधिकार मिला है उतना अधिकार मुझको मिलना चाहिए। तो भाई ने कहा अदालत के सामने कि हमने तो ये शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है कि इसके अंतर्गत हमने अधिकार दे दिया है, अब इसको कोई अधिकार नहीं मिलेगा क्योंकि ये शपथ पत्र प्रस्तुत है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि भाई आपने गलत तरीके से कोई कागज प्रस्तुत करके अगर आप किसी महिला का संपत्ति पर से अधिकार छीनते हो तो वो दस्तावेज निरस्त हो जाएगा और उस दस्तावेज को न्यायालय ने निरस्त करने का काम किया। तो मैं मोबाइल वाणी के माध्यम से इस देश की महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से न्यायालय ने ये बात कही, गोवा की न्यायालय ने, वो बॉम्बे हाई कोर्ट का बेंच है गोवा में, तो उन्होंने कहा कि वह जो लिखा पढ़ी करवा लेते हैं, सामान्यतः यह होता है कि लड़की से शपथ पत्र करवा लेते हैं, एक दस्तावेज तैयार करवा लेते हैं, स्टाम्प करवा लेते हैं कि मैं अपने हक को त्यागती हूँ। अगर ऐसा कोई हक त्यागने वाला अगर आपने कागज आपके भाई ने, आपके परिवार वालों ने तैयार किया होगा तो उस कागज को चैलेंज किया जा सकता है। और ये बात बॉम्बे हाई कोर्ट ने तय कर दी और वो दस्तावेज को निरस्त कर दिया और बहन को भाई के बराबर संपत्ति पर अधिकार देने का काम किया। तो ये जो भूमि है, इस भूमि पर हर बेटी को अपने पिता की संपत्ति में भाई के बराबर का अधिकार है।
हाँ मैडम जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसा कि माता पिता की संपत्ति पर बेटी का बराबरी का हक होता है, उसी तरह हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब किसी लड़की की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जब वो अपने ससुराल में जाती है और यदि उसे किसी तरह का बच्चे से या संतान ना हो और ऐसी परिस्थिति में उन्हें भी अपना हक लेने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे।
देखिए, जो पति की संपत्ति है, पिता के रहते संपत्ति का बंटवारा नहीं होता, तो बहू को तो वहां पर अधिकार मिलेगा नहीं। पति का जब तक बंटवारा नहीं होगा तब तक कि उसको अधिकार नहीं मिलेगा, फिर पति की संपत्ति पर उसको अधिकार मिलेगा। तो इस तरीके का दिक्कत का सामना महिला को करना पड़ता है। पर ऐसी स्थिति में जहां उसके बच्चे ना हो और अगर पति भी ना हो तो वो महिला सबसे पहले तो भरण पोषण के लिए न्यायालय में मुकदमा अपने ससुर के खिलाफ भी कर सकती है ताकि उसका पालन पोषण हो सके, और वह मुकदमा दायर कर सकती है संपत्ति पर अधिकार लेने के लिए। कि भाई मेरे पति के हिस्से की संपत्ति मुझको दी जाए। अगर महिला के पास मुकदमा लड़ने का पैसा नहीं है तो विधिक सहायता केंद्र हर जिले में बने हुए हैं, जहां मुफ्त में सरकार वकील भी उपलब्ध कराएगी और मुकदमा लड़ने का खर्च भी सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। पर हम ये बात देखते हैं कि लोगों को ये बात पता नहीं होती और इसके अभाव में महिलाएं ये सोचती हैं कि बहुत कानून पेच में हम पड़ेंगे, बहुत हमारे को पैसा लग जाएगा और हम कहां से वकील लाएंगे। तो मैं मोबाइल वाणी के जो महिला दर्शक हैं या जो जो दर्शक हैं उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर महिला को संपत्ति पर अधिकार नहीं मिला है तो वो महिलाएं विधिक सहायता से वकील लेकर और मुफ्त में वकील मिलेगा और कानूनी का मुकदमा लड़ने का पैसा भी मिलेगा, तो वो अपने हक को ना छोड़े और अपने हक को प्राप्त करने के लिए वो आगे आए। ये तो हो गई भूमि की बात, अब आता है संपत्ति की बात। तो संपत्ति में क्या चीजें आएंगी, गहने का क्या होगा, दहेज का क्या होगा, जिसको हम लोग दहेज कहते हैं वो है स्त्री धन। किसी भी महिला को शादी के समय चाहे ससुराल पक्ष से मिला हो सामान या ससुराल मायके पक्ष से मिला हो तो वह दहेज नहीं है, वो स्त्री धन है और उस पर सिर्फ और सिर्फ महिला का अधिकार होता है। ससुराल में लोग गहने ले लेते हैं, गाड़ियां ले लेते हैं और जो डिमांड होती है वो सारी डिमांड करके चीजों को ले लेते हैं और लड़की को वधू को उससे वंचित करते हैं, तो ये कानूनन अपराध है। और ऐसे में भी महिला उनके खिलाफ मुकदमा दायर करके जो दहेज का सामान है, जो स्त्री धन है, उसको प्राप्त करने की वो अधिकारी है। जी
मैडम जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने अपने उद्बोधन में बहुत एक अच्छी बात कही है, जो गरीब रेखा के अंतर्गत जीवन यापन करने वाले परिवार है उनके लिए विधिक सहायता की जो बात की है, इसका लाभ लेने के लिए क्या कार्रवाई करनी पड़ती है, किस तरह की?
इसका लाभ लेने के लिए विधिक सहायता केंद्र बने हैं अदालतों में, अगर सौसर का है तो सौसर में भी बने हैं, छिंदवाड़ा में बने हैं। छिंदवाड़ा में जैसे ही अदालत के गेट के अंदर घुसते हैं और किनारे पर आप देखेंगे सीधे हाथ की तरफ एक ऑफिस बना हुआ है, उस ऑफिस में जज बैठते हैं और वहां पर मुफ्त में मुकदमा लड़ने के लिए आवेदन देने का काम वहां के जज को करना पड़ता है, क्योंकि वो पीठासीन अधिकारी वहीं पर बैठते हैं और उनके पास आवेदन पत्र देना होता है और उन्हें जिन दस्तावेजों की जरूरत होती है वो दस्तावेज अगर वो प्रस्तुत कर दे तो वो उसको मुकदमा लड़ने का खर्च और मुकदमा लड़ने की राशि वहां से मिलेगी। और अगर कोई आपराधिक मामला भी होता है तो वहां पर उसके लिए भी मुफ्त में वकील उपलब्ध कराने का काम विधिक सहायता द्वारा किया जाता है।
मैडम जी, मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न जानना चाहूंगा। कुछ वर्ष पूर्व और वर्तमान में भी एक पैरालीगल करके अधिवक्ता के अलावा गांव-गांव में पैरालीगल की नियुक्तियां हुई थी, वो पैरालीगल इन महिलाओं को किस तरह की सहायता कर सकते?
उनका ये काम था कि वो गांव में जाकर ग्राम पंचायत में सभाएं लेने का काम करें, गांव के लोगों को पैरालीगल जो की नियुक्ति की जाती है वो गांव में जा जाकर ये बताएं कि उन्हें मुफ्त में विधिक सहायता किस तरीके से ली जाएगी, वो वहां लोगों को फॉर्म बनाएंगे, वो वहां पर ये जाकर बताएंगे कि कौन से मामले जो आपराधिक हैं जिसमें जमानत हो जाती है, कौन से मामले हैं जिसमें मुकदमा लड़ने का खर्च न्यायालय द्वारा दिया जाता है, वो कौन से मामले हैं जिसमें अधिवक्ता की नियुक्ति की जा सकती है, क्या क्या दस्तावेज इकट्ठा करना है, ये पैरा लीगल की यह जिम्मेदारी होती है। पर चूंकि हमारे गांव के लोग जागे हुए नहीं है, वो विधिक सहायता में या कानून की प्रक्रिया को समझने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, जब तक उन पर कोई विपत्ति ना पड़ जाए तब तक वह इस चीज से दूर रहते हैं और कहते हैं भगवान किसी को अस्पताल का और कचहरी का मुंह ना दिखाए। यही समझने के कारण, यही भ्रम होने के कारण उन्हें सही तरीके से जानकारी नहीं मिल पाती और वो न्याय पाने से वंचित हो जाते हैं। तो हर पंचायत में पैरालीगल वाले को जाना चाहिए, वहां बताना चाहिए और उनकी मदद करने का काम गरीबों को करना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी आपका कि आज आपने मेरी भी आवाज सुनो कार्यक्रम के तहत महिलाओं से संबंधित अधिकारों पर महत्वपूर्ण राय साझा की। इसके लिए मोबाइल वाणी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है।
धन्यवाद।